फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो एकता के ताज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। एकता के ताज पर संगीत गूंजे शांति का, मिले मन से तार मन के राग हो आनंद का। आत्मा का हंस गाए मिलन के गीत, भावना के ताल पर नर्तन करे नित प्रीत, नर्तन करे नित प्रीत। सद्विचारों की सदा गूंजे यहाँ झनकार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो गाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु हैं आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। जगमगाते हैं जो तारे ज्योति बिंदु हैं आत्मा, ज्ञान की गंगा बहाता है पिता परमात्मा। निराकार ये दिव्य लोक है सुखों का भावना और प्यार, सद्भावना और प्यार। झूमती हर पल यहाँ सदाय मत बहार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार।
ओम शांति। आज का हमारा स्वमान है मैं फरिश्ता हूँ, और इस स्वमान का बहुत सुंदर अभ्यास कराने के लिए आज हम सभी के बीच में एक सुंदर सा प्यारा पवित्र और शांति से भरपूर ऐसा फरिश्ता आया है, डॉक्टर सविता बहन। एक हाथ की ताली से भी हम उनका स्वागत करें। यस, आदरणीय डॉक्टर सविता बहन, आप एक सत्यता, सभ्यता, सात्विकता और पवित्रता की मूर्त हो। आप ज्ञान रत्नों को इतने सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से सबके सामने आप प्रस्तुत करते हो कि एक एक ज्ञान रत्न हमारी बुद्धि रूपी कलश में बैठता जाता है। आप बाबा का वो एक अनमोल रत्न हो जिसे आदरणीय मीठी परेम श्रद्धेय दादियों की पालना प्राप्त हुई है। और हाँ, आप बाबा का वो एक ज्ञान सूर्य हो। बाबा ज्ञान सूर्य है और आप भी एक ज्ञान सूर्य हो, और ये ज्ञान सूर्य लगातार अपनी ज्ञान की किरणों को सारे विश्व में फैलाकर सबके मनों को रोशन करता है, तो आइए आज ये अव्यक्त फरिश्ता विशेष रूप से अपने ज्ञान रतन आपके सामने रखने जा रहा है। उस टॉपिक का नाम है अव्यक्त फरिश्ता स्थिति। आपका स्वागत है दीदी। स्वागत है। ओम शांति। तालियां बजा, अच्छा लगेगा। ओम शांति। ओम शांति। सभी यहाँ मधुबन में पांडव भवन में हैं, तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव तो कर ही रहे होंगे। कर रहे नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है फरिश्ता बनना, और फरिश्ता सो देवता बनना। फरिश्ता बने बिना देवता नहीं बन सकेंगे, ये बाबा ने हमें कहा है। तो हमारा पहला भविष्य है फरिश्ता स्वरूप, और फिर संपूर्ण भविष्य स्वरूप है देवताई स्वरूप। तो जैसे देवता पद भी हम नंबरवार प्राप्त करते हैं, ऐसे सभी ब्राह्मण फरिश्ता बनते हैं, लेकिन नंबरवार फरिश्ता बनते हैं। तो फरिश्ता बाबा जब कहते हैं, तो क्या फरिश्तों के लक्षण हैं, क्या फरिश्तों की निशानियां हैं? तो जैसे फरिश्तों को दिखाते हैं कि उनके पंख होते हैं, यानी वो उड़ती कला वाले होते हैं। आपको इस स्थूल में पंख होने की बात नहीं है, लेकिन उड़ती कला वाले होते हैं, यानी वो ऊंची स्थिति में रहते हैं। तो वही उड़ सकता है जो हल्का होता है। कोई भारी वस्तु उड़ नहीं सकती, भारी वस्तु तो नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता स्थिति माना जो सदा हल्के हैं, संकल्प में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, कर्म में भी हल्के, अपने संस्कारों में भी हल्के, स्वभावों में भी हल्के, और संबंध संपर्क में भी हल्के। यानी कोई उनके संबंध संपर्क में भी आएगा तो भारीपन महसूस नहीं करेगा। तो अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, तो वो बोझ हमें नीचे ले आता है। और वो बोझ कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कहा हमारे खुद के पाप कर्मों के बोझ हैं, पिछले जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है आत्मा के ऊपर। तो अगर हमने वो अभी हल्का नहीं किया है, तो भी हम फरिश्ता नहीं बन पाते। फिर साथ में जो जिम्मेवारियों का बोझ है, मैंपन, मेरापन आता है ना, ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं ये करता हूँ या मैं ये हूँ, तो उसका भी एक बोझ महसूस होता है। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि मेरे को तेरे में बदल दो। हल्के कैसे होंगे? जब बोझ बाबा को दे देंगे, तो वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, बाबा की जिम्मेवारी है। करण करावनहार बाबा है, तो हल्के हो जाएंगे। संस्कारों का भी बोझ है, तो पुराने संस्कार जो हैं, वो मेरे नहीं, ईश्वरीय संस्कार मेरे संस्कार हैं। जो बाबा के संस्कार हैं, वो मेरे संस्कार हैं। तो इसमें हम अपने को हल्का रखेंगे, तो हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। फिर फरिश्ते कौन होते हैं? फरिश्ते जमीन पर पांव नहीं रखते। फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं पड़ते, माना ये निशानी बताते हैं फरिश्तों की। तो कौन सी धरती पर फरिश्तों के पांव नहीं पड़ते? तो फरिश्तों के बुद्धि रूपी पांव देह भान की धरती पर नहीं पड़ते। यानी देह भान से न्यारे ही फरिश्ता बन सकते, क्योंकि फरिश्ता अव्यक्त स्थिति है, ब्राह्मण साकारी स्थिति है। हम ब्राह्मण है माना, साकार रूप में हम इस जन्म में ब्राह्मण हैं, लेकिन जब हम अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में हैं, यानी आकारी स्थिति में हैं या निराकारी स्थिति में हैं, निराकारी स्थिति बीज रूप स्थिति है और आकारी स्थिति माना डबल लाइट स्थिति, जब आत्मा लाइट के कार्ब में है, जो शरीर है हमारा वो लाइट का है, तो वो आकारी स्थिति है, वो देहभान से न्यारी स्थिति है। हम देहभान से परे होंगे तभी हम उस आकारी स्थिति का अनुभव करेंगे जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप है। तो ब्रह्मा बाबा तो है ही आकारी फरिश्ता, तो जब हम बाबा के पास जाते हैं सूक्ष्म वतन में, योग करते हैं तो वतन में जाते हैं ना, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? बाबा के समान ही फरिश्ता बनना पड़ेगा, तब हम बाबा से मिलन मना सकेंगे, नहीं तो हम बाबा से मिलन नहीं मना सकते। तो इसीलिए बुद्धि रूपी पांव को देहभान की धरती से ऊपर उठाना पड़ेगा और फिर फरिश्तों की जो भाषा है वो भाषा इशारों की भाषा है, इसलिए वतन में वाणी नहीं है, टॉकी नहीं है, सूक्ष्म वतन में मूवी है। तो बाबा से हम कोई बोल बोल कर बात नहीं करते, जैसे यहाँ पर हम साकार रूप में आपस में बोले बिना एक दो की बात को नहीं समझ सकते, लेकिन अव्यक्त स्थिति में संकल्पों से समझते हैं, वो संकल्पों की भाषा है। संदेशी भी वतन में जाती है ना, तो संदेशी वतन में कोई बाबा थोड़ी बोलता है, कैसे समझती है बाबा के संदेश को? संकल्प, बाबा के संकल्प कैच करते हैं और फिर वो कैच करके उसे हमें वर्णन करके वो सुनाते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब स्वयं की वो अव्यक्त स्थिति है, आकारी स्थिति है, जो बताया कि वो लाइट के शरीर में हम उस स्थिति में स्वयं को अनुभव करते हैं फरिश्ता स्थिति में। तो वो भाषा हमारी जो हो जाती है अव्यक्त स्थिति की जो भाषा है, बाबा कहता है ऐसी स्थिति में जो भी हम संकल्प करते हैं वो हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं और बाबा की टचिंग और कैचिंग बहुत क्लियर होती है। इसीलिए बाबा कहता है कि संदेशियों में भी अंतर होता है, तो कब वो क्लियर मैसेज कैच कर पाएंगे बाबा का? जब उनकी पूरी तरह से वो अव्यक्त आकारी स्थिति होगी, मन की स्थिति वो होगी, तो हमारी वो पावर फरिश्ता स्थिति में बढ़ जाती है। तो बाबा इसीलिए हमको कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि देह अभिमान नेचुरल हो गया, अभी संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि देह अभिमान नेचुरल हो गया है, ऐसे ही देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल हो जाए। तो देही अभिमानी में ये दो स्थिति है, फरिश्ता स्थिति और निराकारी अशरीरी स्थिति। तो इसके बजाय इस स्थिति में हम ज्यादा रहे तो उसके लिए ही मेहनत है, अभ्यास किए बिना तो नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया, जब बाबा को पता चला कि मैं ये जो हूँ साकार वतन में, मुझे फरिश्ता बनना है, क्योंकि बाबा ने तो धीरे धीरे राज खोले ना, हमें तो सब ज्ञान आते ही मिल जाता है, 7 दिन में सबको सब पता चल जाता है, लेकिन उस समय तो कई सालों के बाद बाबा को पता चला कि वतन में जो मेरा रूप है, लाइट का रूप है, वो अलग है और यहाँ मैं जो साकार में हूँ वो अलग है। तो जब संदेशी ने ये बताया तो फिर बाबा को बताया उसने कि बाबा अंतर है, जो ऊपर वाला बाबा है वो तो बहुत चमकीला है, आप में तो उतनी चमक नहीं है। तो बाबा को लगा मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ही वो बनना है, कहा ऊपर भी वही बाबा है लेकिन ये अंतर है। तो फिर बाबा ने विशेष तपस्या की और वो जो 2 बजे उठने का जो बाबा ने पुरुषार्थ किया, वो उसके बाद से ही बाबा फिर 2 बजे उठकर तपस्या करते थे, क्योंकि बाबा को पता था कि सारे दिन का समय तो बच्चों की सेवा के लिए है, वो समय मुझे मिलता नहीं, तो मेरा समय कौन सा है, यही समय है। और बाबा ने उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत की और इसीलिए बाबा सबको महसूस होते थे
बाबा से जो भी मिलते थे सब बताती है ना दादियां अनुभव जो भी उस समय के रहे। अब तो साकार बाबा के समय के बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन जो भी थे वो उन दिनों जो बाबा से मिले वो बताते हैं कि बाबा चलते फिरते फरिश्ता अनुभव होते थे, ऐसे लगता ही नहीं था कि बाबा इस लोक के हैं। भासना आती थी, माना कोई बाहर का भी मिलने आ जाता था बाबा से तो उसको भी बाबा से वही फीलिंग आती थी। भले ही बाबा कोई साधारण काम ही कर रहे हो, बाबा तो सब काम करते थे बच्चों के साथ, पता है ना, सब्जी भी काटते थे तो अनाज भी साफ करते थे, और भी एक बार हाँ क्या बनाते थे गोबर के, हाँ वो गोबर के गोले बनाते थे। उस समय अंगीठी जलती थी ना, अब तो गैस का जमाना आ गया, अभी लगता है फिर से अंगीठी पे जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल उस जमाने में गैस थी नहीं, तो वो कोयले के कोयला और गोबर मिला के उसके गोले बना के फिर जलाते थे। हाँ जी हाँ। तो मतलब कहने का कि बाबा कोई भी कर्म कर रहे हैं लेकिन बाबा की स्थिति सदा बहुत श्रेष्ठ होती थी। तो बाबा हमें भी यही कहते हैं कि बच्चे कोई भी कर्म कर रहे हो आप, साधारण काम कर रहे हो, घर में हैं सब तरह के काम हमें करने पड़ते हैं, बाबा की सेवा के लिए भी हम सब तरह की सेवाएं करते हैं, कोई ऐसे थोड़ी केवल ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं। अब टीचर बन गए तो केवल ज्ञान ही सुनाएंगे ऐसा तो नहीं है ना, सब तरह की सेवा हम बाबा के घर में करते हैं। तो कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कैसी हो, अव्यक्त, देह भान से परे हो। तो जब हमारी स्थिति अव्यक्त होगी वो बिना अटेंशन रखे नहीं बन सकती, क्योंकि इतने ज्यादा देह भान के संस्कार गहरे हैं कि एक सेकंड में भूल जाता है। तो इसीलिए वो बार 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 जब हमारा अटेंशन होगा तब अव्यक्त स्थिति हमारी होगी, तो मैं फरिश्ता चल रहा हूं, मैं फरिश्ता बोल रहा हूं, मैं फरिश्ता खा रहा हूं, मैं फरिश्ता काम कर रहा हूं, हो सकता है हाँ? तो खुद को उस लाइट में फील करेंगे। जब ये कॉन्शियसनेस रहेगी, हम शिफ्ट करते हैं ना बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस, और ये है फरिश्ता कॉन्शियसनेस। तो काम करते हुए फरिश्ता कॉन्शियसनेस में, क्योंकि उस समय तो आधार तो चाहिए ना, तो फरिश्ता भी देह है लेकिन लाइट की, लाइट का शरीर है, और सोल कॉन्शियसनेस तो बिल्कुल अशरीरी स्थिति है। तो अशरीरी स्थिति बाबा ऐसा कहता है कि जब चाहिए देह का आधार ले लो, मुझे कर्म करना है, हम कछुए की तरह है ना, कछुआ भी क्या करता है, जब काम करना है तब कर्मेंद्रियां निकाल लेता है और जब नहीं करना है तो समेट लेता है। तो ये हमारी पावर है ना, तो जब चाहिए कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के मैंने कर्म कर लिया, और जब मेरा कर्म समाप्त हो गया तो हम बिल्कुल न्यारे हो गए। तो जब चाहिए न्यारे और जब चाहिए प्यारे बन जाए, तो वो कर्म में भी कुशल जो फरिश्ता होगा वो अपने कर्मों में भी जो कार्य भी करेगा वो बाबा कहता है कम खर्च बाला नशीन, यानी मेहनत कम और सफलता उसको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि स्थिति श्रेष्ठ है, स्थिति ऊंची है, तो ऊंची स्थिति से जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म ही होंगे। फिर जो फरिश्ते की भावना है सब आत्माओं के प्रति कैसी होगी, अगर मेरी फरिश्ता स्थिति है तो हमारी भाव और भावना कैसी होगी। अब आत्माएं तो वैरायटी संपर्क में आती है ना, लेकिन सभी आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना, सदा ही उनके हिम्मत उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना, माना जैसे शिव बाबा दाता है, सदा दाता है, ऐसे ही वो फरिश्ते की भावना होगी, सदा ही स्नेह सहयोग देने की भावना होगी, अपनेपन की भावना होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को फील करते थे सब, मेरा बाबा है, आज भी हम फील करते हैं, भले हमने बाबा को नहीं देखा है लेकिन कोई कहता है मेरा बाबा नहीं है, क्या कहेंगे? कहेंगे जितना मेरा है उतना किसी का भी नहीं है, मेरा ही सबसे ज्यादा प्यार है। तो इतना फील हम बाबा से करते हैं, क्योंकि बाबा की भावना हम सब बच्चों के प्रति ऐसी है, फिर चाहे वो लास्ट नंबर आत्मा ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही जो फरिश्ता स्थिति वाली आत्मा है, उसकी भाव और भावना हर आत्मा के प्रति ऐसी रहेगी। फिर वो सामने वाली आत्मा चाहे इंसल्ट करने वाली क्यों ना हो, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि भाई कोई मेरे इंसल्ट करने वाला है, या कोई मेरे से नफरत करने वाला है, कोई मेरे लिए विघ्न रूप बनने वाला है, कोई मेरे से ईर्ष्या करने वाला है। ऐसे लोग जब संपर्क में आते हैं तब भावनाएं फटाफट बदलती हैं, तब तो भूल ही जाते हैं कि हम ब्राह्मण भी हैं, फरिश्ते की बात तो छोड़ो, कहां पहुंच जाते हैं माया। आज की मुरली में था ना, बाबा ने कहा हाँ, माया हैरान करती है, हाँ माया से हमारी बॉक्सिंग चलती है। तो यहाँ माया अपना रूप ले आती है और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। तो यहाँ ही याद रखना है हमें, जब कोई ऐसी ऐसी आत्माएं आती है तो क्या याद रखना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, फरिश्ता हूँ, मैं कौन हूँ, फरिश्ता हूँ। और फरिश्ते कैसे होते हैं, फरिश्ते हमेशा हरेक को हेल्प करने वाले होते हैं। आप कभी भी देखेंगे ना, दुनिया में भी जो फरिश्ते दिखाते हैं, दुनिया में भी लोग बहुत फरिश्ते मानते हैं, और वो क्या मानते हैं, फरिश्ता आया और उसने मदद की और फिर चला गया, माना वो निस्वार्थ मदद करने वाले होते हैं। वो इसके लिए नहीं रुकते कि मेरे को मेरी मदद करने की महिमा मिलेगी या मेरे को मेरी मदद करने का कोई फल मिलेगा, उनका काम ही है मदद करना। लाइफ में भी हम देखते हैं, अगर हमारे पर कोई मुसीबत आ जाए हाँ, और कोई बिना किसी उसके हमारी मदद करता है, तो हम क्या कहते हैं, आप तो फरिश्ते की तरह आ गए, है ना। तो कौन फरिश्ते की तरह आया, जिसने हमसे कोई शर्त नहीं रखी लेकिन बिना शर्त के हमारे लिए वो कर दिया जो हमें चाहिए था, है ना। तो शिव बाबा हमारे लिए ऐसा करते हैं और बाबा हमें भी ऐसे ही कहते हैं कि हमें कैसा करना है। तो कोई भी आत्मा को हमारा सहयोग चाहिए तो हम हाजिर हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से, ऐसे नहीं मैंने इतना किया ये भी तो करे, मैं ही कर, आज बाबा ने आज के उसमें था ना अव्यक्त इशारे में, मैं ही झुकते रहूं क्या, हम ही झुकते रहते हैं, हम ही करते रहते हैं, तो ये मन में भाव जरा भी ना आए। तो फरिश्ते फिर सबके प्यारे होते हैं, ऐसे नहीं कि किसी के प्यारे हैं और किसी के प्यारे नहीं हैं, लेकिन हद के प्यारे, बेहद के प्यारे जिसको हम कहेंगे, हद के प्यारे नहीं लेकिन बेहद के प्यारे। तो सबको प्यारे क्यों लगेंगे, क्योंकि हम कोई भी मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते या कोई भेदभाव नहीं रखते कि ये मुझे प्यार करता है तो इससे मेरा प्यार है, और ये मेरे से प्यार नहीं रखता है तो फिर मेरा भी इससे प्यार नहीं। वो तो दुनिया वाले भी तो यही करते हैं, तो फिर हमने भी वही किया तो हम फरिश्ता तो नहीं हुए। तो फरिश्ता माना सर्व को प्यार करने वाले, सबसे संतुष्ट रहने वाले, सदा सबको देने वाले। और फरिश्तों को जो सबसे ज्यादा मानते ना, विदेश में मानते, भारत में तो देवी देवताओं को मानते, देवी देवताओं की पूजा हमारे यहाँ क्यों करते हैं, क्योंकि देवी देवताएं भारत भूमि पर हुए, लेकिन विदेशों में देवी देवता नहीं हुए, देवी देवताओं का युग खत्म हो गया, उसके बाद विदेश शुरू हुआ, है ना। जो और जितने भी है, यूरोप, अमेरिका, ये सब देश कब इमर्ज हुए, द्वापर युग में इमर्ज हुए, तो उन्होंने तो देवी देवताओं को देखा ही नहीं, तो वो क्यों पूजा करेंगे। तो फिर क्यों फरिश्तों को मानते हैं, कोई बता सकता है ये राज को, क्रिश्चियनिटी में फरिश्तों को क्यों मानते हैं, क्यों यादगार बना फरिश्तों का, कोई ईसा मसीह फरिश्ता तो नहीं थे, या उनके जो भी पोप वगैरह होते हैं कोई फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मानते हैं उनके कोई चर्च ऐसे नहीं जिसपे फरिश्ता नहीं बनाओ, हाँ, क्योंकि जो बाबा के बच्चे विदेश में सेवा कर रहे हैं, है ना, तो यादगार तो उन्हीं की बनी ना, संगम के चरित्रों का यादगार है, तो विदेश की आत्माओं को भी मुक्ति तो मिली ना, भले जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, वो देवी देवता नहीं बनेंगे, लेकिन बाबा का वर्षा तो मिलेगा ना। किनके द्वारा मिला? बाबा के फरिश्तों द्वारा, यानी बाबा के जो बच्चे जो फरिश्ता रूप थे उनके द्वारा उनको भगवान से वर्षा मिला, इसीलिए वो यादगार फरिश्तों को बहुत मानते, विदेश में फरिश्तों को ही मानते हैं। आप देखेंगे वो जो मिलेंगे ना फरिश्ते के, वो जो बनाते हैं स्टैचू या जो भी छोटे छोटे मॉडल बनाते हैं, वो विदेश, हाँ वो विदेश में ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। सब कहीं भी जाओ आप, इसके कोई भी सरकारी भी अच्छी इमारत होगी ना, हम तो कितनी बार गए हैं तो हमने देखा कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी वो फरिश्ता जरूर बना हुआ होगा। तो मतलब वो इतना याद करते हैं फरिश्तों को, तो इसका मतलब फरिश्तों ने वो कार्य किया है ना, तभी उनका वो यादगार इस तरह से बना हुआ है। और फरिश्तों के लिए बाबा कहते हैं कि फरिश्ते किसी के भी रिश्ते में नहीं आते। फरिश्ता माना जिसका सिर्फ एक बाप से ही सर्व रिश्ते हों। तो फरिश्ते दैवी परिवार के रिश्तों में भी नहीं आते। रिश्ते लौकिक से तो हमारे मोह माया वाले खत्म हो गए। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया से नाता सब तोड़ना है, है ना, वो माता पिता के बारे में भी बाबा ने कह दिया है ना। तो फिर हमारे सब नाते एक बाबा के साथ हैं, इसलिए कहा एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन अब ज्ञान तो मिल गया एक बाबा दूसरा ना कोई, चलो थोड़ा बहुत अनुभव भी करते हैं कि सर्व संबंध बाबा से है, बाबा ही मात पिता है, बाबा ही शिक्षक है, बाबा ही सखा है, बाबा ही साथी है। लेकिन बाबा कहता है कि कोई कोई से थोड़ा थोड़ा जोड़ लेते हैं, माना बाबा तो है लेकिन ये एक सखी भी चाहिए, हाँ, फिर ये भाई बहन है ना, भाई बहन तो चलता है ना, भाई बहन की थोड़ी मना है, तो चलता है। फिर थोड़ा साकार में सहारा तो चाहिए ना, बाबा तो आकारी निराकारी है। फिर कोई मुश्किल आ जाती है तो योग लगता ही नहीं है, कोई उलझन में मन होता है, जरूरत कब पड़ती है, ज्यादा जरूरत कब पड़ती है, वैसे तो ठीक है मुसीबत आती है तभी तो जरूरत पड़ती है, तो तब किसी कोई दिल का हाल ले ले थोड़ा, कोई थोड़ा मदद कर दे। बाबा कहते हैं ऐसे तिनके को सहारा चाहिए, ये क्या तिनके का सहारा चाहिए तो तिनके का सहारा तो चाहिए ना, थोड़ा कोई ना कोई थोड़ा तो सहारा दे देवे। जब तक बाबा से योग लगे तो क्या करें, प्रैक्टिकल बात है ना ये। तो बाबा कहता है कि मानो आप राइट हो कि भाई आप मुश्किल के समय मैंने थोड़ा ही तो सहारा लिया किसी का, पर अगर आपने 1% भी किसी आत्मा का सहारा लिया, यानी मुश्किल में बाबा की बजाय कोई भी आत्मा याद आई, तो फिर उतना बाबा से तो कम हो गया ना, तो फिर उसको 100% नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि 8 की माला इसलिए इतनी छोटी है क्योंकि ये पेपर इतना कठिन है, इसीलिए इसमें इतने कम पास होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई परसेंटेज में किसी ना किसी को अपना बना के रखते ही हैं। तो बाबा से 100% जो संबंध हमारा होना चाहिए कि एक बाबा ही मेरा है, वो 100% नहीं रहता, परसेंटेज में आ जाता है, माना 75% बाबा है, 25% थोड़ा थोड़ा इधर इधर भी है, तो वो हम अपने को चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए फरिश्ता बनना माना कोई कर्म बंधन नहीं, किसी भी आत्मा से संबंध जोड़ा, कोई भी लेन देन किया, हिसाब किताब बनता है, क्योंकि अभी हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना माना हिसाब किताब खत्म करने हैं, तो अगर मैंने हिसाब किताब बनाया तो मैं कर्म संबंध में नहीं हूँ, कर्म बंधन में हम आ जाते हैं। और इसीलिए उन आत्माओं का योग पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपको सहयोग देने वाली आत्मा है, जो भी आपकी स्नेही आत्मा है, फिर कई कई तो लगाव में भी चले जाते हैं, केवल स्नेही सहयोगी तक नहीं रहते, थोड़ा बहुत लगाव में आ जाते हैं, इसके बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। फिर बाबा कहते चाहे वो सेवा साथी ही क्यों ना हो, यही चाहिए। यहाँ तक भी आ जाते हैं कई बार कि यही चाहिए, यही कर सकता है, यही हो सकता है। तो अगर हमने इसमें आ गए तो क्या हुआ, पूरी तरह से हम किसी आत्मा के अटैचमेंट में हैं, तो वो तो फिर माया का अंश हो जाता है। लेकिन अगर स्नेह सहयोग वाली भी बात है तो बाबा ने कहा उसमें भी मानो हम परसेंटेज में आ गए कि ये आत्मा मेरी स्नेही सहयोगी है, और योग के समय हम उसको याद करते हैं, कोई बात हुई तो हम उसको याद करते हैं। अगर बाबा नंबर टू पर याद आया तो फरिश्ता नहीं है। फरिश्ता माना फुल रिश्ता, 100% रिश्ता बाबा के साथ है। और फिर फरिश्ते जो हैं वो कोई भी आकर्षण में नहीं आते। बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधन हैं, मानो रॉकेट है, आज रॉकेट लॉन्च होता है तो वो जब तक पृथ्वी के आकर्षण से यानी गुरुत्वाकर्षण से परे नहीं चला जाता तब तक वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकता, उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही फरिश्ते किसी भी आकर्षण में आ गए तो ऊपर नहीं जा सकते। तो फिर कोई भी व्यक्ति के आकर्षण में या कोई भी आत्मा का संपर्क है उसके आकर्षण में, वायुमंडल के आकर्षण में, कोई पदार्थों के आकर्षण में, कोई भी आकर्षण मन को आकर्षित नहीं करे, माना किसी से भी 1% भी प्रभावित नहीं होना है। आकर्षण तभी होता है जब हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, तो वो आकर्षण से परे होते हैं तब हम वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। और बाबा कहता है तब अंतर्वाहक शरीर के द्वारा फरिश्ता सेवा करता है, क्योंकि ये जो फरिश्ता है, फरिश्ता शरीर है, लाइट का शरीर है ना, तो ये अंतर्वाहक शरीर माना सूक्ष्म शरीर, तो ये कहीं भी जा सकता है, भले हम यहां बैठे हैं लेकिन उस शरीर के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड में कहां भी जिस आत्मा को सहयोग देना चाहें हम उसको सहयोग दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, शांति का सहयोग, शक्ति का सहयोग, खुशी का सहयोग, हिम्मत उमंग उत्साह का सहयोग, जो सहयोग हमें देना है। तो यदि मेरी फरिश्ता स्थिति है तो वो आत्मा अनुभव करेगी। ऐसे हम सभी मनसा सेवा करते हैं लेकिन मनसा सेवा उतना काम नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि वो स्थिति नहीं है, वो विधि, जो विधि बाबा ने हमें बताई उस विधि पूर्वक हम नहीं करते तो सिद्धि भी नहीं मिलती। तो जब वो स्थिति होगी मेरी, जो फरिश्ते के गुण होने चाहिए जो बताए, ये सारे फरिश्ते की स्थिति होगी हमारी, तब जो संकल्प हम किसी आत्मा के प्रति करेंगे उसे जो अनुभव हम कराना चाहेंगे वो उस आत्मा को अनुभव होगा और वो सिद्ध होगा, ये सेवा। और बाबा कहता है अंतिम समय की सेवा यही है, क्योंकि उस समय प्लेन से नहीं जा सकेंगे, ये सब बंद होने वाला है। माना बाबा ने तो पहले से ही हमें बता रखा है कि क्या क्या होने वाला है, तो उस समय यही सेवा अंतिम समय की सेवा है कि हम फरिश्ता स्थिति द्वारा ही एक दो को अगर हमें कोई मैसेज भी करना है तो बाबा कहता है कि ये वायरलेस सेट है, वो तब काम करेगा जब आप वॉइसलेस होंगे। अगर कोई भी वॉइस है तो ये सेट काम नहीं करेगा। तो ये सेवा और जो फरिश्तेपन के फीचर्स हैं वो आपके फ्यूचर को दिखाएं, तो फरिश्तेपन के फीचर्स क्या होंगे? क्या होंगे? न्यारे होंगे. अच्छा, और हाँ, हल्कापन होगा. अच्छा, और हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा. हर्षित चेहरा होगा. बिल्कुल जरूर. बाबा कहते हैं जो फरिश्ते होते हैं वो तो खुशी में, मन का मन खुशी में डांस करता है, तो सदा खुशी की स्थिति में हर्षित होंगे और उपराम होंगे. बिल्कुल उपराम होंगे. क्लीन और क्लियर फीचर्स. फीचर्स माना चेहरा, चेहरे पे वो दिखाई दे. क्या दिखाई देगा? ये तो मन की स्थिति बता रहे हो कोई कोई आप ना, तो चेहरे पे प्यूरिटी दिखाई देगी. चेहरे पर खुशी तो बोला, शांति दिखाई देगी. चेहरा हाँ रूहानियत वाला होगा. तो ये फीचर्स के द्वारा आप दूसरों को उस फ्यूचर का अनुभव कराओगे. तो यानी जो भी हमारे संपर्क में आएगा वो महसूस करेगा कि इनसे मिले तो शांति अनुभव हुई, इनसे मिले तो खुश हो गया मन, इनसे मिले तो कुछ दुख था मन में लेकिन खुश हो गए. माना मन की स्थिति दूसरे की भी बदल जाएगी जो भी हमारे संपर्क में आएगा. जैसे ये भी होता है ना कि हल्के होते हैं, तो आप हल्के हैं तो सामने वाले को भी आप हल्का कर देंगे, उनसे बात करेंगे तो वो भी हल्के हो जाएंगे. तो ऐसी स्थिति वो फरिश्तेपन की स्थिति होगी. और फरिश्ता जो डबल लाइट है, यानी आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट. तो जो शरीर की लाइट है, बाबा कहता है वो इस तरह की लाइट अनुभव हो, क्योंकि एक लाइट तो आत्मा की है ही है और शरीर उसके चारों तरफ है. तो जैसे सूर्य की अपनी लाइट होती है और सूर्य की लाइट के चारों ओर भी ऑरा, प्रकाश का ऑरा फैला होता है, माना लाइट में लाइट होती है. सूर्य के चारों ओर किरणें फैली हुई हैं और फिर हम दिखाते भी कैसे हैं, सूर्य का चित्र भी जो बनाते हैं वो हम इस तरह से ही बनाते हैं ना, तो वो किरणें फैली हुई हैं और बीच में सूर्य है. तो ऐसे ही हमारी स्थिति कि आत्मा और आत्मा में ये लाइट का, आत्मा के ऊपर ये लाइट का शरीर. तो ये अभ्यास, ये अनुभव हम करते रहेंगे तो हम दूसरों को साक्षात्कार करा सकेंगे. यानी साक्षात्कार मूर्त बनने की जो स्थिति है वो ये स्थिति है जिसको डबल लाइट कहा. बिना लाइट के साक्षात्कार नहीं होता. या जैसे हम एक दो को भी तभी देख सकते हैं जब हम लाइट में बैठे हैं, बिना लाइट के तो हम नहीं देख सकेंगे. तो वो साक्षात्कार जो बाबा कराते थे, बाबा कहते हैं अंतिम समय का भी जो प्रत्यक्षता होगी वो साक्षात्कार के माध्यम से होगी. जैसे ओम मंडली शुरू हुई साक्षात्कार से शुरू हुई, तो ऐसे ही अंत समय में हम साक्षात्कार मूर्त बने, बाबा के समान हम साक्षात्कार करा सकें आत्माओं को, वो हमारी स्थिति डबल लाइट वाली चाहिए. तो ऐसी डबल लाइट स्थिति का अभ्यास हमें करना है, अभी से करना है. और जो फरिश्ते होंगे, वो फरिश्ते जो हैं वो सदा ही, हाँ जी, न्यारे प्यारे तो हो गया, हाँ, सदा विश्व सेवाधारी होंगे, बेहद के सेवाधारी होंगे. जैसे हाँ जैसे बताया, विश्व कल्याणकारी होंगे. माना केवल एक स्थान पर सेवा करने वाले नहीं, माना अपने सेंटर के सेवाधारी, अपने शहर के सेवाधारी नहीं, लेकिन हाँ फरिश्ता जो है वो बेहद का होगा. तो वह एक स्थान पर बैठे हुए, अब जैसे विश्व में कितनी स्थितियां बदलती रहती हैं, तो फिर अब जैसे युद्ध चल रहे हैं बीच बीच में, कहीं भूकंप आ जाते हैं या कहीं कोई भी ऐसा सीन हो जाता है, या कोई हमारे ही कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं. अब हम तो नहीं जा सकते सब प्रोग्राम में, लेकिन जहां भी हम बैठे हैं तो हम वो अपना सेवा का फर्ज निभाते हैं कि हमें वो सहयोग देना है. तो हम फरिश्ते कहीं भी बैठे हुए आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। तो अमृत वेले भी उठ करके हम वो विशेष सकाश उन आत्माओं को देंगे जो दुखी हैं या जो किसी भी कारण से परेशान हैं, कष्ट में हैं। यहाँ तक कि हम पर्सनल भी अपने कोई जो होते हैं संबंधी होते हैं, होता है ना कि ये ज़्यादा बीमार है। कई बार यहाँ से यज्ञ से ही कहा जाता है कि हमारे ये वरिष्ठ हैं, इनके लिए हमें योगदान करना है। तो कोई व्यक्तिगत रूप से भी पूरे विश्व की आत्माओं के लिए तो जहाँ हमें सहयोग देना है वो हमें जिम्मेवारी निभानी है, क्योंकि हम बाबा के राइट हैंड हैं। अगर सारी दुनिया की आत्माएं बाबा को याद कर रही हैं तो इसका मतलब वो कार्य हमें भी करना है। क्योंकि दुखी होते हैं तो लोग किसको याद करते हैं? अपनी अपनी रीति से भगवान को ही याद करते हैं ना। अब वो चाहे कोई अल्लाह को याद कर रहा है, चाहे गॉड फादर को याद कर रहा है, या यहाँ है भारत में देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है? बाबा ही कर रहे हैं ना सबके लिए, क्योंकि वो सब आत्माएं तो यहाँ ही तमो प्रधान बन चुकी हैं। अभी जो भी धर्म पिता हैं या जो भी देवी देवताएं हैं वो तो सब यहाँ ही हैं। तो अब बाबा ने हमें वो शक्ति दी है कि हम बाबा के मददगार हैं, तो वो फरिश्ता रूप में हमारा फर्ज जो कर्तव्य है वो हमें स्मृति में रहना चाहिए। तो अगर हम ब्राह्मण संगठित रूप से, भले ही थर्ड संडे को ये रखा हुआ है कि हमें हर थर्ड संडे को पूरे विश्व की आत्माओं के लिए हम जहां भी हैं हमें वो योगदान करना है, लेकिन फिर भी ये देखने में आता है कई बार कि हम विस्मृत हो जाते हैं। और जब विस्मृत हो जाते हैं तो फिर वो सेवा जो हमें करनी चाहिए वो सेवा हम विश्व की नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये फरिश्ता बनने का जो पुरुषार्थ है, जैसे हमारे बाबा ने किया, ऐसे हमारी दादियों ने जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया, जो हमने देखा दादी प्रकाशमणि जी को भी, और जो हमारे गुलजार दादी थे, विशेष गुलजार दादी जी का बहुत इसके ऊपर ध्यान रहा, क्योंकि दादी ही मेन संदेशी थे जो बाबा का सारा ये जो जो जिन्होंने ये बाबा को सुनाया। एक कैलाश दीदी भी थे जो अभी गांधीनगर में है। ये दो थे जिन्होंने बाबा के उस अव्यक्त रूप का सारा चित्रण किया। तो दादी ने खुद भी, जो हमारे गुलजार दादी थे, तो जो भी फरिश्ता स्थिति वाले होंगे, जो हमने देखी उनकी स्थिति, कि वो सदा अचल अटल अडोल होंगे। कभी भी उनके अंदर क्यों क्या का संकल्प नहीं आता है, क्योंकि ऊंची स्थिति माना, जैसे एरोप्लेन ऊंचा है तो नीचे के कोई भी चीज़ें हैं वो उसके लिए जैसे हैं ही नहीं, चाहे शहर हो, गांव हो, पहाड़ हो, नदी हो, वो उसके लिए कोई बाधा है ही नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति क्या है, बहुत एरोप्लेन बहुत ऊंचा है। तो फरिश्ता माना ऊंचा ही है ना, वो फरिश्ते थोड़ी नीचे रहते हैं। तो जब वो ऊंची स्थिति में होंगे तो वो साक्षी स्थिति हो जाती है, आप ऊपर से कोई चीज को देख रहे हो, तो फिर उसका प्रभाव हमें नहीं पड़ता, और वो ऐसे क्रॉस होगा जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे एरोप्लेन कैसे क्रॉस करता है, जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो हमने दादियों को देखा, ऐसे दादियों की वो स्थिति देखी कि यज्ञ में आज भी बाबा ने कहा ना, विघ्न तो आने ही है, ऐसा कभी होगा नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, और बाबा भी इसमें कुछ नहीं करेगा। कि आप सोचो कि भाई भगवान का यज्ञ है, बाबा कर दे, ठीक कर दे, क्यों नहीं करता है बाबा? हाँ, लेकिन बाबा ने कहा ये ड्रामा में नोंद है और ये सब होना ही है। तो दादियों ने सब पास किया, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस रही, क्योंकि ऊंची स्थिति में रहे और वो साक्षी स्थिति से हर सीन को उस फरिश्ता स्थिति से उन्होंने पार किया। और वो जैसे मैंने कहा कि गुलजार दादी का तो हमने खास देखा, कभी भी उनके मन पर असर ही नहीं आता था, सदा शांत, सदा निसंकल्प, सदा अंतर्मुखी, सदा न्यारी स्थिति। सब दादी से तो मिले हैं, कोई है जो गुलजार दादी से नहीं मिला है? अच्छा अभी भी इसमें भी दो चार हैं, तो सुनते तो है ना, चलो हम साकार बाबा से नहीं मिले तो साकार बाबा की सारी बातें हम सुनते हैं, तो हमें पता है कि बाबा के बोल क्या थे, बाबा के कर्म क्या थे, बाबा कैसे थे। ऐसे ही अभी जिन्होंने नहीं देखा वो सुनते हैं दादियों के बारे में, और अब तो अच्छे अच्छे सबके बुक भी बन गए हैं, जैसे बाबा के लिए बने हैं ऐसे ही दादियों के भी बुक बने हैं, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो और पढ़ के उनके चरित्र क्या रहे, क्या चित्र और चरित्र रहे हमारी उन, क्योंकि अब हमें उन्हें ही फॉलो करना है। बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया लेकिन प्रैक्टिकल में जिन्होंने किया, तो वो सुन करके हमें वो हिम्मत, या हम कहेंगे कि हाँ ये प्रेरणा कि हम भी बिल्कुल बन सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो वो हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है। तो इसीलिए ये अभ्यास का हमें अटेंशन देना है कि हम अपनी स्थिति को देह में रहते हुए अव्यक्त और आकारी स्थिति बनाए, और फिर निराकारी और शरीर स्थिति बनाना भी हमारे लिए सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। एक पवित्र और शांत के फरिश्ते ने, फरिश्ते की बहुत सुंदर डेफिनेशन हम सभी के सामने रखकर फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए कैसे साक्षी भाव, अंतर्मुखता, ये कैसे जरूरी है, बहुत सुंदर तरीके से आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी ने बताया। तो सारा क्लास उनके लिए विशेष रूप से शुक्रिया करेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। हम जब शुक्रिया करते हैं ना, तो हमारे चेहरे के भाव बड़े मीठे चाहिए और हर्षित मुख चाहिए, तो वापिस से एक बार हो जाए मुस्कुराते हुए चेहरे से जी। और अभी हम बाबा को याद करेंगे और फिर उसके बाद आज का स्वमान याद में रखते हुए, जैसे आदरणीय दीदी जी ने पक्का कराया है, मैं एक अव्यक्त फरिश्ता हूं, इसी भान में योग के पश्चात सभी ब्रेक के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ेंगे। पहले योग होगा और फिर जल्दी से जल्दी वापस हम यहाँ उपस्थित होंगे आदरणीय राजू भाई जी के क्लास के लिए। Hey।
हमारे रब।